शामली का कमरा हमेशा की तरह सधा हुआ था, जरूरत से ज्यादा सादा, लेकिन हर चीज अपनी जगह पर। बड़ी सी मेज पर विश्वनाथ की फाइलें फैली थीं, कुछ पर लाल टैग लगे थे, कुछ पर नीले। शामली एक एक करके उन्हें देखती जा रही थी, कहीं तारीखें मिलाती, कहीं नोट्स ठीक करती। उसकी उंगलियों में आदत थी, काम करते हुए चेहरे पर वही गंभीर शांति। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। आऊं? अदिति की आवाज आई। शामली ने पलट कर देखा और एक पल के लिए रुक गई। अदिति साड़ी में थी, हल्की रंगत की साड़ी, किनारे पर पतली सी बॉर्डर, बाल खुले नहीं थे, हल्के से पीछे संभरे, जैसे जानबूझकर सादगी ओढ़ी हो। पर उसी सादगी में एक ठहराव था, आत्मविश्वास का, अपने होने का। अदिति, शामली के चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ गई। आज तो तुम बहुत अलग लग रही हो। अदिति ने हल्का सा कंधा उचकाया। अलग या ठीक? उसने मुस्कुराकर पूछा। बहुत ठीक, शामली ने ईमानदारी से कहा। सारी तुम पर हमेशा अच्छी लगती है। और आज? उसने वाक्य पूरा नहीं किया, बस सिर हिलाया। अदिति कमरे में आ गई। उसकी नजर मेज पर फैली फाइलों पर पड़ी। फिर से पापा के काम? उसने नरमी से पूछा। हाँ, शामली ने एक फाइल उठाकर अलमारी की ओर बढ़ते हुए कहा। कुछ पुराने कागज थे, सोचा आज ही सहेज दूं। अदिति ने कुर्सी खींची और बैठ गई। कुछ पल तक उसने कुछ नहीं कहा, बस शामली को देखती रही, उसकी चाल, उसकी आदतें, उसकी जिम्मेदारियां। फिर अचानक बोली, शामली, मुझे लगता है हम सबको कहीं घूमने चलना चाहिए। शामली ने फाइल अलमारी में रखते हुए पलट कर देखा। घूमने? हाँ, अदिति की आवाज में हल्की सी चमक आ गई। थोड़े दिन के लिए, बाहर, इस हवेली से दूर। शामली ने फाइल बंद की, चाबी घुमाई। अदिति, तुम जानती हो यहाँ कितना काम रहता है, मैं चली गई तो? यही तो, अदिति ने बात बीच में काटी, लेकिन लहजा जिद्दी नहीं था। हवेली में नौकरों की कमी नहीं है, और दादी के लिए बुआ है, सब संभाल लेंगे। शामली ने कुर्सी के पास आकर खड़े होते हुए कहा, तुम जानती हो दादी की तबीयत? मुझे पता है, अदिति ने तुरंत कहा, और मैं जानती हूँ कि तुम उनकी कितनी फिक्र करती हो, लेकिन इसीलिए ही तो कह रही हूँ, थोड़ा आराम भी जरूरी है। शामली चुप हो गई। वो बैठ गई अदिति के सामने। अचानक ये ख्याल क्यों आया? अदिति ने नजरें झुका ली। कुछ पल उसने साड़ी के पल्लू के किनारे को उंगलियों में घुमाया, फिर धीरे से बोली, आर्यन? शामली समझ गई, वो कुछ नहीं बोली, बस सुनती रही। वो मुझसे दूर रहता है, अदिति ने बिना शिकायत के कहा। मतलब रहता तो है, पास भी है, लेकिन जैसे हमेशा एक दीवार बीच में रहती है। उसने सिर उठाया। मैं चाहती हूँ कि हम अकेले हों, बिना इस हवेली के, बिना लोगों की नजरों के, ताकि तुम समझ ही रही हो। शामली ने गहरी सांस ली। तुम सोचती हो बाहर जाने से सब बदल जाएगा? नहीं, अदिति ने ईमानदारी से कहा, पर शायद कुछ आसान हो जाए, उसे खुलने का मौका मिले और मुझे समझने का। शामली कुछ सोचती रही। अदिति ने हल्की हंसी के साथ कहा, सोचो तुम, मैं, आर्यन और पापा, कितना अच्छा लगेगा, जैसे एक परिवार। शामली की आंखों में एक पल के लिए नमी चमकी, बहुत हल्की। पर काम? काम रुकेगा नहीं, अदिति ने नरमी से कहा, पर हम तो रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं। कमरे में कुछ पल चुप्पी रही। बाहर आंगन से किसी के चलने की आवाज आई, फिर दूर होती चली गई। शामली उठी, खिड़की के पास चली गई। बाहर वही रोजमर्रा, हवेली, नौकर, दिन की हलचल। उसने धीरे से कहा, तुम जानती हो मुझे डर लगता है, अगर मैं न रहूं तो सब बिखर जाएगा। अदिति भी उठकर उसके पास आ गई। सब नहीं बिखरता शामली, कभी कभी छोड़ना भी संभालना होता है। शामली ने उसकी ओर देखा, और अगर आर्यन फिर भी नहीं बदला? अदिति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो कम से कम मैं ये जान लूंगी कि मैंने कोशिश की। उसने शामली का हाथ थाम लिया, और तुम मेरे साथ रहोगी, यही काफी है। शामली ने हाथ नहीं छुड़ाया। सासू माँ से बात करनी होगी। मैं कर लूंगी, अदिति ने तुरंत कहा, तुम बस हाँ कह दो। शामली ने एक पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, हम देखेंगे। अदिति की आंखों में चमक आ गई। बच्चों जैसी नहीं, बल्कि उस औरत की जो जानती है कि पहला कदम कितना अहम होता है। सच? हाँ, शामली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर वादा करो सासू माँ की तबीयत का ध्यान रहेगा। पूरा, अदिति ने भरोसे से कहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। विश्वनाथ की आवाज आई, शामली? शामली ने दरवाजा खोला। हाँ। विश्वनाथ की नजर पहले फाइलों पर गई, फिर अदिति पर। आज तो तुम बहुत सलीके में हो, विश्वनाथ ने मुस्कुराकर कहा। आपकी बेटी की तारीफ है, अदिति ने हल्के मजाक में कहा। विश्वनाथ हंस दिए। अच्छा, कुछ बात थी? अदिति ने शामली की ओर देखा, एक नजर जो पूछ भी रही थी और हिम्मत भी दे रही थी। शामली ने सांस ली। विश्वनाथ जी, अदिति कह रही थी कि हम सब कहीं बाहर चलें कुछ दिनों के लिए। विश्वनाथ ने भौहें उठाई। घूमने? हाँ, अदिति ने आगे बढ़कर कहा। आप, मैं, आर्यन और शामली, थोड़ी ताजगी। विश्वनाथ कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, काम? सब संभल जाएगा, अदिति ने वही भरोसा दोहराया। विश्वनाथ ने खिड़की की ओर देखा, फिर वापस। सोचेंगे, उसने कहा, आज शाम बात करेंगे। अदिति ने सिर हिलाया, यही काफी था। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में फिर वही दो औरतें थीं, एक जिम्मेदारियों से बनी, दूसरी चाहतों से। शामली ने अदिति की ओर देखा, तुम सच में बहुत आगे तक सोचती हो। नहीं, अदिति ने धीमे से कहा, मैं बस हार नहीं मानती। शामली ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कमरे में फिर सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो बोझिल नहीं था, वो किसी नए रास्ते की आहट था। कमरे में कुछ पल तक दोनों खामोश रहीं। शामली अलमारी के पास खड़ी थी, लेकिन अब उसका ध्यान फाइलों पर नहीं था। अदिति खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी, जैसे अपने ही ख्यालों को थोड़ी हवा देना चाहती हो। अदिति, शामली ने धीरे से कहा, तुम जानती हो ना, आर्यन जितना शांत दिखता है, भीतर उतना ही उलझा हुआ है। अदिति ने बिना पलटे जवाब दिया, जानती हूँ, इसीलिए तो मैं उसे और समय देना चाहती हूँ, पर दूरी नहीं। शामली उसके पास आकर खड़ी हो गई। कभी कभी ज्यादा चाहना भी बोझ बन जाता है। अदिति ने उसकी ओर देखा, आंखों में वही ठहराव था, पर अब उसमें समझ भी जुड़ गई थी। और कभी कभी, उसने कहा, बोझ उठाने से ही पता चलता है कि रिश्ता कितना मजबूत है। शामली ने हल्की सांस छोड़ी, तुम बदल रही हो। नहीं, अदिति मुस्कुराई, मैं साफ हो रही हूँ खुद के लिए। बाहर से हवेली की घंटी की आवाज आई, शायद कोई आया था या कोई जा रहा था। जिंदगी चल रही थी अपने ढंग से। शामली ने धीरे से कहा, अगर ये सफर हुआ ना तो शायद सबके लिए अच्छा होगा। अदिति ने सिर हिलाया, और अगर नहीं भी हुआ, उसने शांत स्वर में कहा, तो कम से कम दिल को ये तसल्ली रहेगी कि हमने कोशिश की। कमरे में फिर चुप्पी छा गई, लेकिन इस बार वो डर की नहीं, उम्मीद की थी।